पेज नंबर 12। महाकवि बाण के हर्ष रचित में राजभवन के संगीत गृह का उल्लेख है। राजप्रसादों की जिस रचना का उल्लेख बाण में है, उसकी परंपरा 77वीं ईस्वी पूर्वकालीन साहित्य के लेकर उत्तरवर्ती साहित्य में बराबर पाई जाती है, जिसमें संगीत शाला का अनिवार्य स्थान है। कालिदास की विश्वविख्यात रचनाओं में संगीत कला से संबंधित जो विवरण यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं, वे तत्कालीन लोकरुचि एवं संगीत संबंधी स्थिति एवं भारत के सिद्धांतों के प्रायोगिक पक्ष के परिज्ञान के परिचायक हैं। इस युग में संगीत कला को यथेष्ट राज सम्मान प्राप्त था। राजगृहों में संगीत शालाओं का संचालन बड़ी ही सफलतापूर्वक होता था। मालविका, हंसपादिका, शर्मिष्ठा, इरावती तथा इंदुमती जैसी सुयोग एवं प्रतिभा संपन्न कलाकृतियां इन कलाकृतियों का निष्पादन होता था। संगीत कला को राजाश्रय प्राप्त था। यही बात नहीं, कुछ राजा जन संगीत अध्ययन में रुचि रखते थे तथा उस कला में पारंगत प्राप्त करते थे। राजा यानी अग्निमित्र के राजगृह में संगीत शाला थी, जिसमें संगीत के विविध अंगों का अध्ययन तथा अध्यापन अधिकारी आचार्यों की देखरेख में होता था। ऐसे आचार्यों को उनकी योग्यता के अनुकूल वेतन दिया जाता था। संगीत शाला के अतिरिक्त संगीत शिक्षा के लिए गुरु परंपरा प्रचलित थी और इसको विशेष गौरव के साथ देखा जाता था। कुशल एवं विशेषज्ञ कलाकारों का निर्माण इसी पद्धति से होता था। पृष्ठ संख्या 13। कुछ परिवारों में संगीत कला पारंपरिक तथा पारस्परिक व्यवसाय के रूप में चलती थी और इस परिवार की संतान को उसी कला में परिनिष्ठित किया जाता था। राजभवन में संगीत की शिक्षा का प्रबंध विशेष रूप से राजस्त्रियों तथा उनकी दासियों के लिए होता था। संगीत शाला में स्वर, वर्ण, गीत, मूर्छना, तान, राग, वस्तु तथा अभिनय इत्यादि की यथाविधि शिक्षा प्रदान की जाती थी। शाकुंतलम में हंसपादिका के संगीताभ्यास को उपलब्ध करके कालिदास कहते हैं, अहो रागव परिवाहिनी गीति, अर्थात गीति के अनुरूप स्वर संयोग दर्शनीय है। इस प्रसंग में हंसपादिका के संगीत का वर्णन कालिदास ने एक कुशल संगीतज्ञ की भांति किया है। हंसपादिका संगीत शाला में बैठकर गीत गायन के लिए उद्धत है और वह मधुर और विशुद्ध गीत का स्वरालाप कर रही है। मध्यकाल में संगीत का विकास। नाट्यशास्त्र के प्रणेता महर्षि भरत के बाद के और मुसलमान शासकों के आगमन से मध्यकाल पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तब भरत के उपरांत संगीत का क्या स्वरूप होगा, इस विषय में हमें कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती। हाँ, अनुमान से ही कहा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल राजपूत काल में ऐसे उल्लेख विकीर्ण पाए गए हैं जिनके आधार पर यह धारणा बन सकती है कि उस युग में भी शिक्षा प्रदान करने का प्रचलन रहा होगा। पूर्व मध्यकाल में राजपूत राजा जितने युद्ध प्रिय थे उतने ही संगीत प्रेमी भी थे। इसी कारण वे संगीतकारों व कलाकारों को अपने अपने राज्यों में आश्रय देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया करते थे और समय समय पर उनको पारितोषिक उपाधियां आदि प्रदान किया करते थे, सम्मानित एवं प्रोत्साहित भी किया करते थे। राजपूत शासकों की छत्रछाया में संगीत की पर्याप्त उन्नति तो होती ही रही, किंतु राजाओं की पारस्परिक फूट एवं एक दूसरे से वैमनस्य के कारण कलाकारों की मनोवृत्ति में संकुचन आ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि संगीत अपने पहले आध्यात्मिक धरातल से नीचे गिर गया और उसमें विलासित एवं श्रृंगारिता का प्राधान्य हो गया। इस समय राजभवनों में संगीत शालाओं की विद्यमानता को भी देखा जा सकता था, किंतु स्वतंत्र रूप से आम जनता के लिए संगीत शालाएं थीं या व्यक्तिगत रूप से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा संगीत शिक्षा का कोई व्यवस्थित प्रबंध था, इस विषय में कोई विवरण नहीं मिलता। इस संबंध में भी सभी एक मत हैं कि खिलजी, गुलाम, तुगलक, सैयद एवं लोदी वंशों के अल्पकालीन शासन के बाद मुगल शासन की नींव पड़ी। इन सभी सुल्तानों व बादशाहों के राज्यकाल में चिश्ती परंपरा के सूफी संतों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए संगीत को माध्यम के रूप में अपनाया। पेज नंबर 14। तत्कालीन सुल्तान व बादशाह इस सूफी संतों की परंपरा से पूर्ण रूपेण प्रभावित थे। इन विभिन्न वेशों में सुल्तान या बादशाह भारतीय संगीतज्ञों को अपने अपने राज दरबारों में नियुक्त भी करते थे। उन्होंने अपने धर्म के प्रचारार्थ स्थान स्थान पर मस्जिदें, मदरसे एवं खानाकाह सूफी मठ स्थापित किए और इन मस्जिदों मदरसों में से फारसी, उर्दू, हिंदी आदि भाषाओं की शिक्षा भी दी। विद्या समाप्त करने पर अध्यापक की संस्तुति पर कुछ उपलब्धियां जैसे फाजिल, आलिम, काबिल आदि भी प्रदान की जाती थीं। इस प्रकार ऐसे संगीतज्ञ भी उभर कर आने लगे जो फारसी की गजलों के साथ हिंदी गान भी गाते थे। इस दृष्टि से अमीर खुसरो का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने भारतीय एवं मुस्लिम दो संस्कृतियों के आदान प्रदान के फलस्वरूप भारतीय संगीत में पर्याप्त परिवर्तन लाए। संगीत शास्त्र व संगीत कलाकारों की दृष्टि से 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का काल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, किंतु फिर भी भारतीय एवं मुस्लिम दो संस्कृतियों के आदान प्रदान के फलस्वरूप भारतीय संगीत के रूप में पर्याप्त परिवर्तन का हो जाना स्वाभाविक ही है। इस काल में विभिन्न विधाएं प्रचलित हुई, परंतु संगीत शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।